Jai Radha Madhava Kunja Bihari.
यह प्रवचन पुस्तक वितरण पर श्री श्री राधा पार्थ सारथी मंदिर नई दिल्ली में श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज द्वारा दिया गया।
गोपी जाना बाला भाधारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपने आज के दो श्लोकों के अनुवाद में सुना कि किस प्रकार पांडव भाई, क्योंकि वो निरंतर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण कर रहे थे, इस कारण शुद्ध चेतना के कारण वो कहाँ लौटे, भगवान के दिव्य धाम में। और इस श्लोक और तात्पर्य में बड़े स्पष्ट रूप से समझाया जा रहा है कि भगवान के धाम लौटने के लिए यह आवश्यक है कि हम तीन गुणों के पार जाएं, या हम हर रूप से माया रूपी कार्यों से जुदा रहें, तो ही भगवान के धाम आप लौट सकोगे, जैसे कि यहाँ कहा गया है। लेकिन समस्त भौतिक कलम से पूर्णतः शुद्ध होने के कारण पांडव ने अपने इसी शरीर में उस धाम को प्राप्त किया। तो प्रभुपाद जी हमें कहते थे जिस प्रकार पांडव और अनेक और भक्तों ने भगवान के धाम को प्राप्त किया, उसी प्रकार आज के भक्त भी भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। ये नहीं कि ये असंभव है, अगर हम भी सदा निरंतर परम भगवान का स्मरण करें। तो इसलिए रूप गोस्वामी जी भक्ति रसमृत सिंधु में समझाते हैं कि जो अनेक नियम हैं या विधियां हैं, इन विधियों का मूल भाव क्या है कि हम हर स्थिति में परम भगवान का निरंतर चिंतन करें। तो पांडव भाइयों ने, युधिष्ठिर महाराज को पता था परम भगवान अप्रकट हो चुके हैं, तो युधिष्ठिर महाराज ने जब निर्णय किया कि वो भगवान के धाम लौट रहे हैं, तो उनके जो दूसरे भाई हैं उन्होंने भी ये निर्णय किया कि हम सब ने इस संसार से भगवान के धाम लौटना है, और भगवान के धाम लौटने की जो योग्यता है उसे हर व्यक्ति प्राप्त कर सकता है अगर हम इस श्लोक के संदेश का लाभ उठाएं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि भक्ति योग के मार्ग में व्यक्ति जुड़ता है, और जब भक्ति शुद्ध भक्ति योग के मार्ग में जुड़ता है तो भौतिक कार्य में जुड़ने की कोई रुचि नहीं रहती। तो ये ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है श्रीमद् भागवत के द्वारा, और प्रभुपाद जी ने, जैसे आप सब जानते हो, बहुत ज़्यादा बल दिया इस कार्य पर। किस कार्य पर? ग्रंथों के वितरण के कार्य पर, क्योंकि शुद्ध भक्ति ही एक साधन है जिसके द्वारा आप भगवान के धाम के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। शुद्ध भक्ति एक साधन है जिसके द्वारा परम भगवान को आकर्षित कर सकते हो। नारद मुनि जी ने व्यासदेव जी से क्या कहा था? तुम्हारी निराशा का कारण है कि तुमने शुद्ध भक्ति के ज्ञान की चर्चा नहीं की। फिर उन्होंने इस सबसे उत्तम ग्रंथ श्रीमद् भागवत की रचना की। तो प्रभुपाद जी ने भक्तों को यह आदेश दिया था कि अगर तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो क्या करो, ग्रंथों को बांटो। प्रभुपाद जी एक समय भक्ति सिद्धांत जी को मिले थे राधा कुंड में। उस समय भक्ति सिद्धांत जी अपने शिष्यों के साथ ब्रजमंडल परिक्रम कर रहे थे और भक्ति सिद्धांत जी ने कहा कि अगर भगवान तुम्हें धन दे, इस धन से ग्रंथों को प्रकाशित करना। और कई दफा जब प्रभुपाद जी मिले भक्ति सिद्धांत जी से, उन्होंने इसी विषय पर बल दिया और प्रभुपाद जी ने 1932 में एक बड़ी सुंदर व्यास पूजा ऑफरिंग लिखी थी, जिसके पश्चात गौड़िया मठ में उनके गुरु भाई उन्हें कवि बुलाने लगे और भक्ति सिद्धांत जी ने उन्हें अनेक अवसरों पर ये प्रेरणा दी कि ग्रंथों को बांटना, प्रकाशित करना और फिर वितरण करना। भक्ति सिद्धांत जी स्वयं उन्होंने भी इस कार्य पर बल दिया। असल में भक्तिविनोद ठाकुर जी पहले महान आचार्य थे हमारी संप्रदाय में, जिन्होंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन या ग्रंथों का वितरण आरंभ किया। उससे पहले, भक्तिविनोद ठाकुर से पहले एक बुक इंडस्ट्री या प्रिंटिंग इंडस्ट्री थी नहीं। प्रिंटिंग इंडस्ट्री को लगभग किताबों का छापना केवल 150 या 125 सालों से शुरू हुआ। तो भक्ति विनोद ठाकुर पहले महान आचार्य थे जिन्होंने इस सुविधा का लाभ उठाया। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भक्ति संबंधित अनेक ग्रंथों की रचना की, लगभग 100 ग्रंथों की। उनकी एक पुस्तक चैतन्य महाप्रभु जीवन और शिक्षा के ऊपर उन्होंने भेजा, कहां विश्व के सारे बड़े बड़े महाविद्यालयों में और मैकगिल यूनिवर्सिटी मॉन्ट्रियल में, जहाँ की इस्कॉन का तीसरा केंद्र खुला था मॉन्ट्रियल शहर में 1967 में, वहाँ हमारे भक्तों ने लाइब्रेरी में जाकर इस ग्रंथ को प्राप्त किया। तो ये ग्रंथ भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भेजा था सारे विश्व के महाविद्यालयों में, आपको पता है कब? 1896। और 1896 वो साल है जबकि प्रभुपाद जी इस पृथ्वी पर प्रकट हुए। प्रभुपाद जी ने अपना ग्रंथ टीचिंग द लॉर्ड चैतन्य को प्रभुपाद जी ने प्रकाशित किया था बाकी चैतन्य चरितमृता से पहले, जिसमें उन्होंने चैतन्य चरितमृता के सार को प्रस्तुत किया है। और प्रभुपाद जी ने इस ग्रंथ को डेडिकेट किया भक्तिविनोद ठाकुर को और कहा, He inaugurated the Lord Chaitanya stage, he spread Lord Chaitanya teaching in the Western world in 1896, the year of my birth. कि भक्तिविनोद ठाकुर जी ने विश्व भर में चैतन्य महाप्रभु जी की ग्रंथ का वितरण किया उस साल, उस शुभ साल पर जबकि प्रभुपाद जी ने अपने आप को प्रकट किया इस पृथ्वी पर। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक छोटा प्रेस बनाया था, छापने का प्रेस। हर मंदिर के साथ भक्ति सिद्धांत जी ने प्रेस खोला था। कलकत्ता में एक मंदिर था, वहां भी एक छोटा प्रेस था और नवद्वीप में भी प्रेस था। और उनके शिष्य जाकर किताबों को बांटते थे और थोड़े पैसा दिन में इकट्ठे करते थे, बस 3-4 पैसे। और भक्ति सिद्धांत जी बहुत खुश होते थे कि उनके शिष्य गए ग्रंथों को बांटने के। तो प्रभुपाद जी ने देखा था, क्योंकि गुरु महाराज की कितनी इच्छा थी इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए, और प्रभुपाद जी ने स्वयं इस कार्य को सफल बनाने का प्रयास किया। 1944 में प्रभुपाद जी ने बैक टू गॉडेड पत्रिका छापना आरंभ किया और 1951 में जब प्रभुपाद आए राधा दामोदर में, उससे पहले प्रभुपाद थे झांसी में, और पिछले दो हफ्ते पहले हम लोग झांसी में थे रथ यात्रा के उपलक्ष। तो झांसी में प्रभुपाद जी ने लीग ऑफ डिवोटीज की स्थापना की थी। असल में प्रभुपाद जी ने पूरी प्लानिंग की थी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना में संघ के विषय में झांसी में, पर फिर प्रभुपाद जी की इच्छा थी एक बिल्डिंग को प्राप्त करने के लिए, जो कि प्राप्त नहीं कर पाए, तो झांसी से वहां गए राधा दामोदर मंदिर में। तो राधा दामोदर मंदिर में जो प्रभुपाद थे, ग्रंथों का अनुवाद कर रहे थे, खास करके प्रथम स्कंद भगवतम दूसरे, और मथुरा से लगभग रोज प्रभुपाद जी दिल्ली आते थे। कैसे? गाड़ी में, थर्ड क्लास डब्बे में। आजकल तो सरकार ने थर्ड क्लास डब्बा उड़ा दिया है। थर्ड क्लास डब्बे में प्रभुपाद जी आते थे, फिर वो छबड़ी बाजार में जाकर कागज खरीदते थे, फिर किताब को छापते थे, फिर छापने के बाद खुद जाकर इसको बांटते थे, आपको पता है। और इस इन सब कार्यों के अलावा प्रभुपाद जी को धन भी इकट्ठा करना होता था चंदा के रूप में किताबों को छापने के लिए, फिर खुद जाते थे बांटने के लिए। आप सब भक्त जो दिल्ली में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, आप सबका एक सौभाग्य है जो इस संस्था के दूसरे भक्तों को प्राप्त नहीं हुआ। पता है क्या, आप उसी शहर में ग्रंथों को बांट रहे हो जहां की प्रभुपाद जी ने खुद बांटा। दिल्ली एक शहर है जहां की प्रभुपाद जी खुद जाते थे ग्रंथों को बांटने के लिए। कनॉट प्लेस, कनॉट प्लेस में उन दिनों में एक कॉफी हाउस होता था, अभी भी है कॉफी हाउस नहीं, तो प्रभुपाद जी इस कॉफी हाउस के अंदर जाते थे। आप कहोगे प्रभुपाद जी कॉफी हाउस के अंदर क्यों जाते थे? अंदर जाकर वो बैठ जाते थे एक टेबल पर, तो जो भी व्यक्ति आता था कॉफी हाउस में बैठने के लिए, फिर प्रभुपाद जी जाकर उसको अपनी बैंक रिकॉर्डेड पत्रिका बांटते थे। प्रभुपाद जी कॉफी हाउस के अंदर जाते थे प्रचार करने के लिए, और किसी कारण के नहीं। इतनी गहरी भावना थी। और एक समय गर्मी के समय उनको सनस्ट्रोक हो गया था किताबों को बांटते हुए, तो जैसे ही किसी और के सहयोग से होश में आए, फिर उन्होंने ग्रंथों का वितरण आरंभ कर दिया। और जब प्रभुपाद जी पश्चिम देशों में गए, तो भारत से अपना श्रीमद् भागवतम ले गए थे, जो प्रथम स्कंद उन्होंने भारत में छापा था। और जैसे ही उन्होंने इस संस्था की स्थापना की, उन्होंने शिष्यों को क्या आदेश दिया? डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, मेरे ग्रंथों का वितरण करो। शुरू शुरू में जो इस संस्था के भक्त थे, उन्हें कोई कल्पना भी नहीं थी कि कैसे ग्रंथों का वितरण होगा। अब आप सबको जब प्रेरणा दी जाती है ग्रंथों को बांटो, ग्रंथों का वितरण करो, इतनी कठिन स्थिति नहीं है जैसे कि जब पहले थी, जब प्रभुपाद जी के शिष्य बने अमेरिका में और प्रभुपाद जी ने कहा डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, उन्हें समझ भी नहीं आ रहा था कि कैसे बांटेंगे इन किताबों को, कौन खरीदेगा। पर उनको पूरा विश्वास था कि अगर प्रभुपाद जी कह रहे हैं और वो अपनी बुद्धि लगाएंगे तो सफलता प्राप्त हो सकती है। तो उन्होंने जाकर शुरू किया और पूरे दिन में एक दो किताब बिकती थी मुश्किल से, क्योंकि इतिहास में कभी किसी ने इस रूप से ग्रंथों का वितरण नहीं शुरू किया जैसे कि इस्कॉन के भक्तों ने शुरू किया था। अब दूसरे लोग नकल कर रहे हैं भारत में भी, पर शुरू तो किया था इस्कॉन के भक्तों ने। फिर एक दिन, इससे पहले प्रभुपाद जी ने कृष्णा बुक छापी थी, और कृष्णा बुक की जापान से उन दिन हमें हम किताब छापते थे डाइन अपॉन प्रिंटिंग प्रेस जापान में, तो कोई 15-20 कॉपीज आई थी एडवांस कॉपीज प्रभुपाद जी के पास। तो 1968 की रथ यात्रा में सैन फ्रांसिस्को में प्रभुपाद जी ने सारी एडवांस कॉपीज और अपनी पर्सनल कॉपी भी भेज दी। उन्होंने कहा किसको चाहिए, सबने आके लिया। और एक दिन दो भक्त लौट रहे थे संकीर्तन करके, तो वो लोग एक पेट्रोल पंप में रुके पेट्रोल लेने के लिए सैन फ्रांसिस्को में। पेट्रोल पंप में पेट्रोल वाले को पैसा देने के बजाय उन्हें कहा व्हाई डोंट यू टेक दिस बुक। तो उसने कृष्णा बुक देखी, बढ़िया बढ़िया, उसे बड़ा अच्छा लगा। तो उसने पैसे के बजाय किताब ले ली। जब पैसे के बजाय से किताब ले ली तो इन दो भक्तों केशव और एक और थे बुढ़ी मंदरशन, उन्हें लगा कि अगर इस उदाहरण को देखकर उनका उत्साह बहुत बढ़ गया कि पेट्रोल पंप वाले ने एक किताब ले ली पेट्रोल के बजाय में। फिर उन्होंने दुकानों के आगे जाकर खड़े होकर बुक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया। फिर उन दिनों अमेरिका में फ्राइडे सैटरडे स्टोर ज़रा 9 बजे तक खुले रहते हैं। फिर भक्तों ने कोशिश की, स्टोर लेट तक खुले रहते हैं, लेट तक खड़े रहने लगे। तो इस प्रकार आस्ते आस्ते प्रयास करते करते बुक डिस्ट्रीब्यूशन इतनी तेजी से बढ़ते गया कि प्रभुपाद जी से बहुत ही प्रसन्न हो। भाव यह था प्रभुपाद जी की इच्छा है, इसलिए भक्त जाकर प्रयास करते थे। जब प्रभुपाद जी भारत में आए तो उन्होंने यही इसी विषय की स्थापना करने का प्रयास किया। और प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न हुए थे, उन्होंने देखा कि भारत में बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। तो प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि इन ग्रंथों का वितरण किया जाए, क्योंकि इन ग्रंथों द्वारा क्या है, इन ग्रंथों द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है जिसके सहयोग से आप जीवन को सुधार सकते हो। जैसे आज के 2 श्लोकों में आप पढ़ रहे हो किस प्रकार पांडव भाई, क्योंकि वो निरंतर परम भगवान का चिंतन कर रहे थे, कहां लौटे इसी शरीर के साथ, भगवान के धाम लौटे ग्लोक वृंदावन। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि उस ग्लोक वृंदावन में हर व्यक्ति लौट सकता है अगर वो इस शिक्षा का लाभ उठाए। तो हमने ये ज्ञान पहुंचाना है दूसरों को। ये जो ग्रंथों के वितरण की सेवा है, ये सब सेवाओं में सबसे महत्वपूर्ण सेवा है, क्योंकि हमारे आचार्यों ने और स्वयं भगवान ने ये स्थापित किया है क्या कि सब भक्तों में कौन है सबसे प्रिय, जो कि मेरा प्रचार करता है। ये इस विषय का वर्णन गीता के 18वें अध्याय में है, जहां भगवान कहते हैं सबसे प्रिय वो है जो मैं प्रचार करता है, उससे ज्यादा ना कोई हुआ है ना भविष्य में होगा। चैतन्य महाप्रभु जी ने भी इसे विषय पर बल दिया। चैतन्य महाप्रभु जी एक समय हरिदास ठाकुर के घर गए थे, कुटिया में गए थे। हरिदास ठाकुर की कुटिया थी जगन्नाथपुरी मंदिर के निकट, और वहां चैतन्य महाप्रभु जी ने जाकर हरिदास से कहा, हरिदास ये बताओ किस प्रकार इन पत्नियों का उद्धार होगा, है ना। तो हरिदास ने क्या कहा, प्रभु चिंता न करिए, आप चिंता मत करो, हा राम महाराम बालिकाए नामाभास, हरि नाम के उच्चारण से, नामाभास उच्चारण से इनका उद्धार होगा। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि जैसे चैतन्य महाप्रभु की चिंता थी नच्चों को देखते हुए, और हरिदास ने महाप्रभु जी से कहा आप चिंता मत करो इनका उद्धार होगा हरि नाम के माध्यम से, उसी प्रकार प्रभुपाद जी कहते हैं परम भगवान अत्यंत चिंतित हैं बद जीवों को इस भौतिक संसार में देखते हुए, और जो उनके भक्त हैं वो भगवान की इच्छा को पूरा करते हैं कैसे, प्रचार करने के द्वारा। क्योंकि भक्त जानते हैं कि परम भगवान इस स्थिति को देखते हुए दुखी हैं। जैसे कि अगर किसी का बच्चा गुम हो जाए और आप उसको ढूंढ कर लौटा दो माँ बाप के पास, तो आपके वो आभारी होंगे कि नहीं, हम अब क्या भारी होंगे, है कि नहीं? तो उसी प्रकार परम भगवान उन भक्तों के प्रति आभारी हो जाते हैं जो कि प्रयास करते हैं क्या उनके संदेश को आगे पहुंचाने के। तो हर साल इस्कॉन के भक्त दिसंबर के महीने में मैराथन करते हैं। जब ये मैराथन शुरू हुआ था, पहले शुरू हुआ था, पहला मैराथन हुआ था केवल 2 दिनों के लिए, फिर अगला मैराथन हुआ था 1-2 सालों बाद, 2 दिन से 1 हफ्ता हो गया, फिर कई 1-2 साल बाद 1 हफ्ते से हो गया 1 महीना, और कई स्थानों में जैसे रशिया में उदाहरण के लिए कम से कम 4 या 5 बड़े मैराथन होते हैं साल में। गीता जयंती के उपलक्ष्य में होता है दिसंबर में, नरसिंह चतुर्दशी के समय होता है 1 महीने का, फिर जन्माष्टमी के समय होता है प्रभुपाद का मैराथन, कम से कम 3-4 मैराथन होते हैं साल में। तो प्रभुपाद जी से पूछा था भक्त ने मैराथन का अर्थ क्या, तो प्रभुपाद ने कहा कम सोना और कम खाना, अगर सब कुछ साधारण समय जैसा रहेगा तो वह मैराथन नहीं कहलाएगा। मैराथन मतलब जरा अधिक प्रयास करना, अधिक तपस्या करना। और ये भक्तों का अनुभव है कि अगर हम प्रयास करें तो उसका नतीजा भी प्राप्त होगा। जैसे कि मैं बहुत ही खुश हूं कि हमारे जो IYF के भक्त हैं, जो मंदिर के ब्रह्मचारी और अधिकतर ये भक्त हैं जो कि गृहस्थ हैं और घर में रहते हैं, ये गृहस्थ भक्त, ये IYF के भक्त हर मैराथन में, हर रथ यात्रा के उत्सव में जाते हैं प्रचार करने के लिए, हर रथ यात्रा में जाते हैं, और सचमुच ये भक्त प्रयास करते हैं। मैंने देखा चंडीगढ़ पंचकुला रथ यात्रा में, झांसी रथ यात्रा में मोटरों को रोक रहे थे, मोटर चल रही है सड़क में, उनको गीता दिखा रहे थे, जहां रेड लाइट होती है, बत्ती होती है, लाल बत्ती होती है, गाड़ियां रुकती हैं, वहां जाकर सबको प्रचार कर रहे थे। मैंने देखा कि बड़े उत्साह के साथ हर अवसर हर दुकान के अंदर जा रहे थे, और इसका क्या परिणाम हुआ? इसका ये परिणाम हुआ कि चंडीगढ़ रथ यात्रा में 1 दिन में उन्होंने 34,000 रुपए की किताबें बांटी, और अगले दिन रथ यात्रा हुई थी पंचकुला में। पंचकुला छोटा शहर है, चंडीगढ़ में इतने व्यापारी नहीं है जितने की दिल्ली या बॉम्बे में हैं, ये तो आप सब जानते हो, सरकारी नौकरियां ज्यादा वहां। तो पंचकुला में भी रथ, और उस दिन शायद IYF के कई भक्त जल्दी आ गए थे वापस, क्योंकि उन्होंने अगले दिन नौकरी में जाना था। तो अगले दिन 40,000 रुपए की गीता बांटी 1 दिन में। और उससे पहले झांसी रथ यात्रा में भी आए थे, उस दिन भी लगभग 35,000 की बांटी थी। तो 3 दिनों में 1,00,000 रुपए की किताबों इन भक्तों ने बांटा, एक पैराफेरनालिया नहीं। हमारी दुकान में जब हमारी जीप जाती है या वैन जाती है तो पैराफेरनालिया भी बिकता है किताबों के साथ, पर ये 1,00,000 रुपए की प्योर किताबें, एक पोस्टर ने, एक अमाला ने, 3 दिन में इन भक्तों ने बांटा। तो आप कैसे, हम तो 1 दिन में 400 रुपए की बांटते हैं, उन्होंने 1 दिन में 30,000 का कैसे बांट दिया? वो ये भी आप जैसे ही हैं, इनमें कई औरतें भी थी, कईयों की पत्नियां भी थी, पर इन्होंने प्रयास किया, बैठे नहीं रहे, एक स्थान में खड़े नहीं रहे, प्रयास किया। जब हम प्रयास करते हैं भगवान के प्रचार के लिए, जब हम प्रयास करते हैं भगवान का ज्ञान देने के लिए, तो भगवान फिर आपको सफलता देते हैं। जैसे इंग्लिश में कहते हैं गॉड हेल्प्स दोज़ हू हेल्प देमसेल्फ्स, जो स्वयं प्रयास करते हैं उनके भगवान सहयोग देते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा यू गिव कृष्णा यू गेट कृष्णा, आप कृष्ण भगवान देने का प्रयास करो तो फिर कृष्ण भगवान आपको शक्ति देते हैं उस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए। भगवान आपके हृदय में, परमात्मा के हृदय में, आपके हृदय में उपस्थित हैं, और जिसको आप प्रचार कर रहे हो उसके हृदय में भी उपस्थित हैं। आपने सोचा कभी? तो जब भगवान देखते हैं क्या बड़ी पवित्रता से नियमों का पालन कर रहे हो, सचमुच हृदय से प्रयास कर रहे हो लोगों का उद्धार करने के लिए, फिर भगवान इस दूसरे व्यक्ति को ये बुद्धि देते हैं, हाँ ये बहुत श्रद्धावान व्यक्ति है। गीता ले लो तुम, आखिर परमात्मा जो व्यक्ति आपको ठुकराता है, जो व्यक्ति आपकी बेइज्जती करता है, जो आपका अपमान करता है, उसके हृदय में भी तो परमात्मा है, ठीक है ना। बेशक वो भौतिकवादी व्यक्ति हो, पर जब भगवान देखते कि हाँ ये बड़े सिंसियरली श्रद्धा से प्रयास कर रहे हैं, तो फिर भगवान उसे सफलता देते हैं। तो दूसरे शब्दों में मैं केवल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम सब प्रचार के कार्य में, चाहे वो मेंबरशिप का कार्य प्रचार हो या बुक डिस्ट्रीब्यूशन का हो, सफलता प्राप्त कर सकते हैं अगर हम प्रयास करें भगवान के संदेश को आगे पहुंचाने के लिए। और आपके सामने आपके ही साथियों का उदाहरण है, मैं कोई विदेश का उदाहरण नहीं दे रहा, मैं आपके शहर के आपके साथियों के उदाहरण दे रहा हूं कि कैसे एक दिन में इन्होंने 35,000 रुपए की किताबें बांटी, और अगले दिन 40,000 की पंचकुला में, और उससे पहले लुधियाना गए थे वहां भी 30-35,000 की किताबें बांटी थी। तो ये जो ग्रंथों का वितरण है ये महत्वपूर्ण है केवल इस दृष्टि से कि इन ग्रंथों में ज्ञान है जिसके द्वारा लोगों का उद्धार होगा। हजारों उदाहरण हैं सारे विश्व में व्यक्तियों का जिन्होंने भक्ति को स्वीकार किया ग्रंथों के माध्यम के द्वारा। प्रभुपाद जी समझाते हैं ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत, बुक भागवत एंड द डिवोटी भागवत, इन दो की संगत से आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न होती है। और हमारा सौभाग्य है इन ग्रंथों में भगवान की वाणी और प्रभुपाद और महान संतों क्या की व्याख्या, और जब हम इनको पढ़ते हैं तो हम भगवान और उच्च भक्तों की संगत प्राप्त करते हैं। जब आप इन ग्रंथों को बांटते हो अपरम भगवान उनके प्रतिनिधियों को अवसर दे रहे हो आपको उपदेश देने के लिए, इसलिए आप भक्तों में सदा उत्साह रहना चाहिए प्रचार के लिए। मैं आपको फिर से वो एक कथा सुनाऊंगा जो पहले सुनाई थी। 1976 में एक मैंने बॉम्बे के एक फ्लोरा फाउंटेन में एक दुकान है इंडिया बुक हाउस, तो उसका मालिक हमारा सदस्य था, तो उनसे बात करके एक बहुत बड़ा बुक डिस्प्ले अरेंज किया था प्रभुपाद के ग्रंथों का, खिड़की में प्रभुपाद के ग्रंथ, एंट्रेंस में प्रभुपाद के ग्रंथ, हर जगह। हाँ, पर एक महीने बाद हमने देखा कि जितनी मात्रा में ग्रंथों को बिकना चाहिए था नहीं बिके। तो मैं प्रभुपाद जी के पास गया, उस समय प्रभुपाद जी उनके बॉम्बे मंदिर में जो उनका नया अपार्टमेंट तैयार हुआ था वहां थे। मैंने कहा कि ये सब प्रबंध किया था, जब भी इतने ग्रंथ नहीं बिके। प्रभुपाद जी ने कहा तो जब आप उत्साह से प्रचार करोगे तो आप दूसरों को प्रभावित कर सकोगे, चाहे कॉन्ग्रीगेशनल प्रीचिंग हो, चाहे ग्रंथ डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ भी हो। पर अगर आप जैसे कई बार हमारे बुक टेबल्स हम लगाते हैं, हमारी वैन जाती हैं, तो अगर हम ऐसे वहां खड़े रहेंगे, बैठे रहेंगे और देखेंगे कौन आता है हमारे पास, उसको थोड़ा किताब ऐसे दिखा देंगे तो करोगे 3-4 किताबें दिन में। इसी प्रकार हमारे जो बुक स्टोर है यहाँ, वहां भी जब भक्त लोग आते हैं, अगर बड़े प्रेम से हम उनका स्वागत करें, बड़े उत्साह से उनको प्रभुपाद जी के ग्रंथ बताएं, तो वो अवश्य ही लेंगे। प्रभुपाद जी ने कहा कि प्रीचिंग इज द एसेंस, ये मंत्र सब भक्तों को याद करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने कहा सब प्रकार के सेवा में प्रचार की सेवा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। पर प्रचार की शक्ति कहां से आती है? कहां से? प्योरिटी इज द फोर्स में प्रहार है, प्योरिटी इज द फोर्स, वो शक्ति आती है साधना के द्वारा। और प्रचार का प्रचार निर्भर है किस कार्य पर, बुक्स आर द बेसिस। प्रचार का मतलब अंत में ग्रंथों को बांटना। जब प्रभुपाद को मिलने भी लोग आते थे, अंत में प्रभुपाद जी प्रभु सदा प्रयास करते थे कि वो प्रभुपाद जी के ग्रंथ भी लेके जाए। जब प्रभुपाद जी ने लाइफ मेंबरशिप का प्रोग्राम भी शुरू किया, उन्होंने कहा कि मेंबर्स को ग्रंथ देने चाहिए, क्योंकि इन ग्रंथों द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है और आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न होती है और बढ़ती है। जो भक्त जुड़े हुए हैं उन्हें भी इन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि ग्रंथ केवल बांटने के लिए है और पढ़ने के लिए नहीं। प्रभुपाद जी कहते थे अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो फिर क्या लाभ। जैसे हमारी इतनी अच्छी लाइब्रेरी है, इसका हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए। हर भक्त को प्रयास करना चाहिए लाइब्रेरी में कम से कम 1 घंटा रोज जाकर पढ़ें इन ग्रंथों को। और प्रभुपाद जी का प्रचार निर्भर है ग्रंथों के वितरण के ऊपर। तभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन शुरू होने जा रहा है थोड़े दिनों में, तो मैं आप भक्तों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सब के सब मंदिर के भक्तों को जुड़ना चाहिए। दिसंबर से भगवतम क्लास भी सुबह के समय किया जाएगा, और आप सब भक्तों को जुड़ना चाहिए इस सेवा के साथ और प्रयास करना चाहिए अधिक से अधिक मात्रा में लोगों को ग्रंथों को बांटने के लिए। पिछले कई महीनों से बुक डिस्ट्रीब्यूशन आपके दिल्ली केंद्र में पहले से अच्छा जा रहा है और भी अच्छा हो सकता है। आप सब जुड़िएगा। मंदिर में सिर्फ पुजारी इसको होना चाहिए और कीर्तन पार्टी और कम से कम भक्त। भगवतम क्लास होगी 6:30-6:30 बजे और सब भक्तों को जुड़ना चाहिए। ये मत सोचना कि हमने तो सब मित्रों को सब रिश्तेदारों को सब पहचान वालों को बांट दिया है। प्रयास करोगे तो भगवान और भी सुविधा देंगे। तो कृपा करके आप सब प्रयास करना प्रभुपाद जी के ग्रंथों को बांटने के लिए। प्रभुपाद जी ने कहा था वृंदावन में जब तक ग्रंथों का वितरण होगा मैं हमेशा जीवित रहूंगा। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने एक रचना में कहा है जो वैष्णव है कभी भी उसकी मृत्यु नहीं होती, वो जीवित रहता है वाणी के द्वारा, है ना महाराज। एंड सुभाष स्वामी विल ऑल्सो ज्वाइन अस इन द मैराथन। अच्छा, तो आज जो है एक बड़े महान पुरुष भक्त सदंग ठाकुर जी का तिरुभाव दिन है, तो वैष्णव भक्त आविर्भाव और तिरुभाव दोनों ही मनाते हैं, क्योंकि जब भगवान के शुद्ध भक्त भौतिक दृष्टि से अप्रकट होते हैं तो किसी और स्थान में जाकर भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो ये नहीं कि उनकी मृत्यु होती, वो हमेशा जीवित रहते हैं वाणी द्वारा और हमेशा कहाँ ना कहाँ भगवान के आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सुरंग ठाकुर जो हैं चैतन्य महाप्रभु जी के भक्त थे और एक बाकू पेड़ के नीचे वो निवास करते थे। वो बाकू पेड़ बूढ़ा हो गया था तो चैतन्य महाप्रभु जी ने उसे गले लगाया तो एकदम जवान हो गया और फल से और पत्तों से भर गया। सुरंग ठाकुर सारा दिन अपने ठाकुर जी की सेवा करते थे, भीख मांगते थे पहले फल का, फिर भगवान की पूजा करते थे, सारा दिन अपने ठाकुर जी की पूजा करते थे। फिर शाम के समय गंगा नदी के पार जाकर चैतन्य महाप्रभु जी के कीर्तन मंडली में जुड़ते थे। तो सारा दिन ठाकुर जी की सेवा और शाम के समय जाकर महाप्रभु जी के साथ कीर्तन करते थे। तो महाप्रभु जी ने आदेश दिया था कि तुम दीक्षा दो, पर सुरंग ठाकुर की इच्छा नहीं थी किसी को भी शिष्य बनाने के लिए। पर एक दिन उनके मन में आया ठीक है मुझे महाप्रभु जी का आदेश का पालन करना चाहिए। तो तैर रहे थे तो उन्होंने देखा एक डेड कॉर्प्स मरा हुआ शरीर पानी में तैर रहा है। तो सुरंग ठाकुर ने जैसे उस मैंने कॉर्प्स को छुआ तो एकदम वो जीवित हो गया और फिर सरंगत ठाकुर ने उन्हें दीक्षा दी और वो बहुत अच्छे भक्त बन गए। उस व्यक्ति का नाम था मुरारी, तो सरंगत ठाकुर का एक और नाम है सुरंगा मुरारी, क्योंकि मुरारी उनके पहले शिष्य थे। तो आज उनका 13वां तिथि है और समाधि किताब में माननीय स्वामी कहते हैं कि वो राधा गोपीनाथ के सेवा करते हैं नंदी मुखी सखी के रूप में, और आज भी आप उनके विग्रह जिसकी वो उपासना कर रहे थे उनकी उनका दर्शन प्राप्त कर सकते हो। नवद्वीप से 40 मिनट दूरी पर है। सरंग मुरारी ठाकुर की। हम जब इन महान संतों का आविर्भाव या तिरुभाव होता है हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें उनकी कृपा प्राप्त हो जिसके आधार पर हम भक्ति में आगे बढ़े। तो हमें इन महान संतों की कृपा की भीख मांगनी चाहिए जब भी हमें मौका मिले। ओके, हरे कृष्ण।